मेरे बहुत बहुत प्यारे दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 11 दिसंबर 2015 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, और साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं दिनेश कुमार सिंह, आप इलाहाबाद से हैं, सुभाष कुमार ठाकुर, आप मुजफ्फरपुर से हैं, और अविनाश कुमार, आप सहारनपुर से हैं। दिनेश, सुभाष और अविनाश, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आज फ्राइडे है और फ्राइडे को मैं कुछ सूचनाएं आप लोगों को देता हूं, और ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए होती हैं जो पहली बार इस ऑडियो से जुड़े हैं। मित्रों, कल सैटरडे और संडे को डेली ऑडियो नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, लेकिन सैटरडे को जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं, न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स, वो आप सभी को नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल होंगी। साथ ही उसी नॉलेज सेंटर पर आपको योजना और कुरुक्षेत्र, हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन के जो एक एक आर्टिकल्स भी अवेलेबल होंगे। यहां मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, जो कुरुक्षेत्र और योजना के आपको आर्टिकल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें आप देखेंगे कि बहुत से आर्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जो हिंदी में होते हैं और इंग्लिश में होते हैं। टाइटल एक ही होता है, राइटर भी एक ही होते हैं दोनों आर्टिकल के, लेकिन मैं दोनों लैंग्वेज के आर्टिकल्स प्रोवाइड करता हूं। वैसा खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की सुविधा को ध्यान में रखकर, जो आर्टिकल मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हिंदी में भी अवेलेबल है, तो मैं उनके भी आर्टिकल्स हिंदी में, वो आर्टिकल्स प्रोवाइड कर देता हूं। दूसरी बात कि जो योजना और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल्स आपको दिए जाते हैं, मुझे नहीं मालूम कि उनके साथ आपका व्यवहार किस तरीके का होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस मायने में आपके लिए बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि वो एक कंप्लीट टॉपिक पर आपको एक कंप्लीट विजन प्रोवाइड करते हैं। देखिए, अखबारों की क्लिपिंग्स क्या हैं कि वो पता लगा कि एक घटना चल रही है और उसे क्रम से धीरे 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 न्यूज़पेपर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दिमाग में एक साथ जो तस्वीर बननी चाहिए वो तस्वीर नहीं बन पाती है, लेकिन आर्टिकल में वो सारी की सारी तस्वीर बिल्कुल एक साथ बनती है, कंप्लीट इमेज आपकी तैयार होती है। इसलिए भले ही आपको ये लग रहा हो कि इस टॉपिक पर तो हम जानते हैं, हो सकता है कि आप जानते हो और आर्टिकल में जो कुछ लिखा गया उससे ज्यादा जानकारी आपके पास हो, इसके बावजूद मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज उसे आप जरूर पढ़ें, क्योंकि उसका एक अलग तरीके का फायदा आपको मिलेगा जिसे आप परीक्षा हॉल में आंसर लिखते समय महसूस करेंगे। तो प्लीज उसकी आप लोग अनदेखी न करें। साथ ही फ्रेंड्स, जो स्पेशल ऑडियो प्रोवाइड किए जाते हैं फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच और थर्ड बैच के स्टूडेंट को, उन्हें स्पेशल ऑडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ ही एक और सूचना है मित्रों, चूंकि नए नए स्टूडेंट्स या नए नए श्रोता लगातार इस ऑडियो से जुड़ते रहते हैं, जो मेरे लिए बहुत खुशी की भी बात है, और मैं अपने सभी आप प्रिय श्रोताओं से ये अर्ज भी करूंगा कि आप सब जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस डेली ऑडियो से जोड़ सकते हैं, प्लीज जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें, क्योंकि जो मेरे पास मेल आ रहे हैं उससे ये बात तो लगभग लगभग मेरे मन में सिद्ध हो चुकी है, और मैं इसके बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जो भी डेली आरडीओ के साथ थोड़ी सी भी ईमानदारी के साथ बर्ताव करते हैं, यानी कि लगातार सुनते रहते हैं, उन्हें इससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है, उनके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी, उनकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में भी, संबंधों को सुधारने में भी, जीवन की गुणवत्ता को बनाने में भी, और कंपटीशन की तैयारी में तो मिलता ही है, और यहाँ तक कि अगर वो कॉलेज और स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसमें भी उन्हें काफी फायदा मिलता है। तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, और यहां मैं जो एक अलग से सूचना देने जा रहा हूं जो पहले दी जा चुकी है लेकिन मैं यहां रिपीट कर रहा हूं, वो ये है कि जैसा कि आप लोगों में से बहुत लोगों को मालूम है, मेरी पत्नी डॉक्टर प्रीति अब डेली ऑडियो के माध्यम से आप तक वो पहुंचती हैं, एक सीधे आप तक नहीं पहुंचती हैं, इसमें सूचना दी जाती है कि डॉक्टर प्रीति जो भी आप सब श्रोता हैं उनके जीवन से संबंधित, इसको आप विशेषकर ध्यान रखें, जीवन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनकी पर्सनल काउंसलिंग करेंगी, कर रही हैं पिछले लगभग लगभग मैं समझता हूं कि 2 से 3 सप्ताह हो गए हैं, और आप सबके काफी फोन उनके पास आ रहे हैं और मेल के जरिए मुझे पता लग रहा है कि उससे काफी आप लोगों को फायदा भी हो रहा है। आप लोगों की समस्याएं तो छोटी सी होती हैं, लेकिन दोस्तों जो समस्या छोटी सी होती है अगर उसका समाधान नहीं हुआ तो जिंदगी पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, तो वो छोटी सी समस्या के समाधान से उनके जीवन की पूरी जो एक रुकी हुई धारा है वो छल छला कर आगे बह निकलती है। तो निश्चित रूप से इसमें जो भी काउंसलिंग करता है उसको एक आत्मसंतोष का अनुभव होता है। तो अपने जीवन से संबंधित समस्याओं पर आप उनके मोबाइल पर रिंग करके पूछ सकते हैं, इसके लिए दिन का बंधन नहीं है, जैसा कि सैटरडे और संडे को डेली ऑडियो नहीं आता है, इसका अर्थ आप ये ना लगाएं कि सैटरडे और संडे को आप उनसे काउंसलिंग नहीं ले सकते हैं, आप उन्हें रिंग कर सकते हैं। उनका जो मोबाइल नंबर है वो है 9644624449। मैं मोबाइल नंबर रिपीट कर रहा हूं, 9644624449। मित्रों बस एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इसके लिए एक समय फिक्स किया गया है, उसके अनुशासन पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, और वो समय है दोपहर से पहले यानी कि सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच में और शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में। आप उन्हें रिंग कर सकते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में डिस्कशन भी कर सकते हैं। दोस्तों एक थोड़ी सी और, आज कहेंगे सोच रहे होंगे कि सर को क्या हो गया, वो सूचना ही सूचना दिए जा रहे हैं। मित्रों ये 2 दिन का जो विक्षोभ होता है तो लगता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा बातें बता दी जाएं। एक सूचना और भी है दोस्तों कि मंडे का जो ऑडियो होगा वो हो सकता है कि आपको डिफरेंट तरीके का ऑडियो सुनने को मिले। मैं एक प्रयोग करने जा रहा हूं, मेरे दिमाग में बात है, अभी बीच में 2 दिन का गैप होगा तो मैं देखता हूं कि वो जो बात मेरे दिमाग में चल रही है वो कितनी शेप ले, कितना शेप ले पाती है, कितनी पक पाती है, और यदि मैं उससे कन्विंस हुआ तो हो सकता है कि मंडे का वीडियो आपको एक अलग ही तरह का वीडियो, सॉरी ऑडियो, इसको सुधार लेंगे, आपको मंडे का जो ऑडियो है एक अलग ही तरह का ऑडियो सुनने को मिले। और अलग तरीके का मतलब ये नहीं कि जो आपके काम का नहीं होगा, डेफिनेटली उसका संबंध आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से होगा, आप सबके जीवन से होगा, मतलब जो मेन थीम है वो वही रहेगी, लेकिन हो सकता है कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारी जो डेली ऑडियो गाइडेंस का एक स्ट्रक्चर है कि हम पहले वेलकम करते हैं, फिर कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं, फिर हम लाइफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, फिर AIR न्यूज की बात करते हैं, फिर अखबारों की क्लिपिंग्स की बात करते हैं, और फिर हम ईमेल पर आते हैं, हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर है। हो सकता है कि इस जनरल स्ट्रक्चर से हट करके आपको कुछ सुनने को मिले, तो ये भी आपके लिए एक छोटी सी सूचना है, लेकिन मैं समझता हूं कि कम महत्वपूर्ण नहीं है। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं अपने अगले चरण पर जो हमारा लाइफ मैनेजमेंट का चरण होता है। फ्रेंड्स कल मैंने आप लोगों से विचारों के बारे में बात की थी और उसमें 3 ऑप्शंस आपको ध्यान होगा मैंने बताए थे, और उससे पहले भी मैं विचारों को ही लेकर के अभी चल रहा हूं। मैंने कहा था कि या तो हम उसे बदलें, जो हमारी परिस्थितियां हम उसको बदल दें, या फिर हम उसे बदल नहीं पा रहे हैं तो उसे उससे छोड़ करके हम अलग हो जाएं, या फिर हम उसे स्वीकार कर लें। तो मित्रों ये जो पहले के 2 हैं कि हम उसे बदलें या उससे छोड़कर अलग हो जाएं, इसको तो समझने में लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है और उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि ठीक है, लेकिन जो मैंने कहा कि हम उसे स्वीकार कर लें, मुझे मालूम है कि मेरी ये बात बहुत से लोगों को नहीं पचती। वो इसके बारे में जब सोचना शुरू करते हैं, तर्क वितर्क करना शुरू करते हैं, तो उनको लगता है कि स्वीकार करने का तो मतलब हुआ कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, मतलब जैसा चल रहा है वैसा ही हम चलने दें, तो ये तो हमारी कायरता हुई, ये तो हमारी कमजोरी हुई, ये तो हमारा समर्पण हुआ, तो ये बात उनको पचती नहीं है। मैं जानता हूं कि आप लोगों में से बहुत से श्रोताओं के दिमाग में ये बात चल रही होगी और मेरे पास एक दो मेल भी कुछ इस तरीके के आए हैं, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, इस बात को आज के लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट में मुझे क्लियर करना चाहिए। मित्रों देखिए कि मैंने कहा क्या है, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि पहले आप देखिए कि क्या आप बदल सकते हैं, और आप किसी भी चीज को पूरी तरह से नहीं बदल सकते, लेकिन कहां तक बदल सकते हैं। तो मैंने कहा कि वहां तक बदलने की कोशिश कीजिए, आप बदलिए, और अगर नहीं बदल सकते हैं और वहां रह भी नहीं सकते हैं तो फिर एक विकल्प है, छोड़ करके उससे अलग हो जाइए, लेकिन जीवन को घुटने के लिए वहां मत छोड़ दीजिए, जीवन को अनाथ मत बना दीजिए, मेरा यह कहना था। तो दो विकल्प आपके सामने शुरू में है और बदलने का विकल्प है, ये जो स्वीकार्य है ये तो फिर अंतिम विकल्प है। आखिरी विकल्प है कि हम बदल भी नहीं पा रहे हैं, हम छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो हम उसके स्वीकार करें। क्योंकि याद देखिए, यहां ध्यान देने की बात है कि जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, किसी भी चीज को पूरे मन से एक अखंड चेतना के साथ, फिर टुकड़े टुकड़े में हम स्वीकार नहीं करते, हम जिस चीज को भी स्वीकार करें, सही स्वीकृति तभी मानी जाती है जब हम पूरे को स्वीकार करें। जैसे मान लीजिए कि पति पत्नी है, बाप बेटे हैं, माँ बेटी हैं, या जो भी हमारे रिलेशन हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दोस्त हैं, तो उन्हें खंड खंड में जब हम स्वीकार करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। खंड खंड में क्या, उसकी ये चीज तो अच्छी लगती है लेकिन ये चीज खराब लगती है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि खराब लगने वाला हिस्सा बढ़ता चला जाता है और जो अच्छा लगने वाला हिस्सा है वो कम होता चला जाता है और हमारे जो रिलेशन हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आप जिसे भी स्वीकार करें संपूर्णता के साथ स्वीकार करें, मतलब उनकी गलत चीजें भी स्वीकार हैं, अच्छी चीजें तो स्वीकार हैं ही, और जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो आपको एक बड़ी विचित्र सी चीज मिलेगी। विचित्र सी चीज ये मिलेगी कि जो व्यक्ति स्वीकार करता है उसमें एक अलग तरीके की शक्ति आ जाती है। शक्ति इस मायने में कि अब उसका जो अंतर मन है वो असंतुलित नहीं है, अनबैलेंस्ड नहीं है। करूं न करूं, रहूं न रहूं, जाऊं चला आऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये सारे द्वंद उसके दिमाग से खत्म हो जाते क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया। और जब स्वीकार कर लिया तो उसका जो अंतर मन है वो एकदम संतुलित हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। और दोस्तों जब आपका अंतर मन बैलेंस्ड हो तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपकी और हमारी जो क्षमताएं हैं वो कितनी गुना बढ़ जाती हैं। केवल क्षमताएं ही नहीं बढ़ती हैं बल्कि गुणवत्ता भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और सच पूछिए तो जीवन के इस आंतरिक संतुलन को साध लेना ही कहीं ना कहीं मैं आध्यात्मिक जीवन जीना मानता हूं। तो दोस्तों जब आपके अंदर एक इनर बैलेंस आ गया तो मान करके चलिए कि आपके काम करने की शक्ति बढ़ गई, आपके काम करने की गुणवत्ता बेहतर होने लगी। ऐसी स्थिति में जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जहां भी आप कुछ कर रहे हैं, उस पर आपका नियंत्रण होने लगेगा, आप इनएविटेबल हो जाएंगे, आप उनके लिए अपरिहार्य हो जाएंगे, उनको लगने लगेगा कि नहीं इसके बिना तो हमारा काम चलेगा ही नहीं। और जहां आपको लगने लगे कि मेरे बिना काम नहीं चल सकता है, तो यहां आपको घमंड करने की बात मैं नहीं कह रहा हूं कि आप घमंड में फूल जाइए और कुछ भी करने लगिए, तब आप अपने टर्म्स डिक्टेट करने लगिए और इस तरीके से डिक्टेट करने लगिए कि उससे सभी का भला हो, सभी का हित सद सके, और इस तरह से धीरे 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 वो चीजें बदलने के करीब पहुंच जाएंगी और चीजें बदलने लगेंगी। तो जो मैं स्वीकार्य की बात कह रहा हूं, याद रखिए उसमें समर्पण नहीं है। स्वीकार्य का मतलब है कि ठीक है मैं इसे स्वीकार करता हूं, मैं इसे लेता हूं और आगे जो होगा वो देखा जाएगा, और आप देखेंगे कि आगे जो होगा वो बेहतर ही होगा। दोस्तों अक्सर होता क्या है कि हम प्रतिक्रिया में आ जाते हैं, हम एकदम रिएक्शन में आ जाते हैं, और ये रिएक्शन शो करता है, ये बता रहा है कि आंतरिक संतुलन हम खो चुके हैं। हम रिएक्ट करते ही तब हैं, आप ऑब्जर्व करके देख लीजिए, अपने बिहेवियर पैटर्न को ऑब्जर्व कर लीजिए, हम रिएक्ट करते ही तब हैं जब हमारा आंतरिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। और जब हम आंतरिक संतुलन में होते हैं तो हम रिएक्ट नहीं करते, हम रिप्लाई करते हैं, हम उत्तर देते हैं, और उत्तर में एक संतुलन होता है, और सामने वाला यह सुनकर यह देखकर दंग रह जाता है कि इस व्यक्ति को जिसे क्रोधित हो जाना चाहिए था, जिसे संतुलित हो जाना चाहिए था, जो कुछ भी कर सकता था, इतने प्रेम से इतने संतुलन के साथ अपनी बात रख रहा है, अपनी बात कह रहा है। तो फिर वो जब ऐसा सोचता है, अपने सोचने के विरोध में वो देखता है कि आपकी प्रतिक्रिया है, विपरीत आपकी प्रतिक्रिया है, तो आपके ग्रिप में आ जाता है और वहां से परिवर्तन की शुरुआत होने लगती है। इसीलिए मित्रों, जो मैं जिस स्वीकार्य की बात कर रहा हूं उसे आप कमजोरी न समझें, बल्कि सच पूछिए तो बदलने का एक अलग और बड़ा खूबसूरत तरीका मान करके चले। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं कल की AIR न्यूज पर। दोस्तों, कल की रेडियो में आपने देखा कि कई खबरें हैं और उसमें से जो सबसे बड़ी खबर जो अभी चल रही है, जो स्वाभाविक भी है, और वो है संसद की कार्यवाही को लेकर। और चूंकि रेडियो की सबसे बड़ी खबर है, अखबारों की भी सबसे बड़ी खबर है, और नो डाउट कि संसद तो बहुत बड़ी चीज होती है, वो हमारे देश की भी सबसे बड़ी खबर है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर हमारे डेली ऑडियो में भी संसद को लेकर के सबसे ज्यादा बातचीत हम कर रहे हैं। मित्रों, अब आपने देखा होगा कि धीरे धीरे अब आपको उस पर आर्टिकल्स भी पढ़ने को मिलने लगेंगे। एडिटोरियल कमेंट्स तो शुरू हो ही गए थे। आज आपको दैनिक भास्कर में सरदीप राज देसाई का एक अच्छा आर्टिकल पढ़ने को मिलेगा इसी को लेकर। और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सरदीप राजदेसाई जो है वो बहुत अच्छा लिखते हैं, इसलिए जब भी उनके आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिले किसी भी इशू पर तो आप जरूर पढ़ें। उनके वो जो इश्यूज लेते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल इश्यूज लेते हैं, उनके पास भाषा की बहुत अच्छी पकड़ है। जर्नलिज्म में लंबे समय तक रहे हैं तो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स सीनेरियो भी उनकी बहुत अच्छी जानकारी में है, तो वो उनका विश्लेषण भी फिर बहुत अच्छा होता है, तो वो आपको आज के भास्कर में पढ़ने को मिलेगा। मित्रों, देखिए कि जो संसद है, लगातार हम इस पर बातें करते आ रहे हैं, और आज प्राइम मिनिस्टर ने एक जो बात कही हमारी, जो न्यूज में थी, जो कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में कही, और वो ये कहा कि लोग कह रहे हैं कि संसद अगर बाधित हो रही है तो GST बिल कैसे पारित होगा। बोले GST बिल तो ठीक है, जो होगा देश के भाग्य में जो हो जाएगा, बदलाव होगा, जो कुछ भी होगा, लेकिन सवाल केवल GST बिल का ही नहीं है, बल्कि बहुत से ऐसे बिल हैं जिनका सीधा सीधा संबंध हमारे लोगों के जीवन से है, गरीब लोगों से है, वो बिल भी पारित नहीं हो पा रहे हैं। यानी कि जो संसद का जो काम है वो हो ही नहीं पा रहा है। आप राजदीप सरदेसाई के आर्टिकल में देखेंगे कि ये पहली बार नहीं है, बल्कि उन्होंने भी लिखा है कि यूपीए की जब गवर्नमेंट 2 थी, यानी कि मनमोहन सिंह जी का जो सेकेंड टर्म था, उस दौरान भी ऐसी स्थिति हुई कि संसद का सिर्फ 60-65% काम हो पाया। उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में थी, और खासकर जो इसके मामले को लेकर के, स्पेक्ट्रम 2 के मामले को लेकर के लगातार संसद बाधित होती रही, मांग की जाने लगी, इस्तीफे की मांग, संसदीय जांच समिति की मांग, फलाने, लेकिन संसद का काम तो बाधित हुआ ही। तो इसको लेकर के राजदीप सरदेसाई ने एक प्रश्न उठाया है कि जो विपक्ष है वो मूलतः एक तरीके से शत्रु की भूमिका क्यों निभाता है। विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष पर इस तरह से नियंत्रण रखना कि वो कोई भी नीति देश के हित के विरुद्ध न बना सके, तो उस पर एक नियंत्रण रहे, जिसको हम पावर ब्रेक के हिसाब से जानते हैं, यानी कि जो सत्ता है, जो शक्ति है, वो बिल्कुल अनियंत्रित न हो जाए। लेकिन पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि पक्ष और विपक्ष में एक जबरदस्त शत्रुतापूर्ण संबंध देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने एक दो बहुत अच्छे उदाहरण भी दिए। एक उदाहरण उन्होंने दिया कि जब भारत में अफ्रीकी राष्ट्रों का सम्मेलन हो रहा था, तो उसमें जो भोज दिया गया था, उस रात्रि भोज में उन्होंने सोनिया जी को आमंत्रित नहीं किया, और नतीजे में यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे भी लीडर थे जिनको आमंत्रित किया गया था, वो भी उस भोज में नहीं आए। तो यहां पर उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस को ही गलत ठहराया है कि वो सही डिसीजन नहीं ले पा रही है, सही एक्शन में नहीं है, उन्होंने सरकारी पक्ष पर भी सवाल उठाए हैं कि वह भी कोई बहुत अच्छी अप्रोच लेकर नहीं चल पा रहे हैं। मित्रों, आपको ध्यान होगा कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय विपक्षी पार्टी की मान्यता को लेकर के एक जबरदस्त विवाद की स्थिति बनी थी कि विपक्षी दल की मान्यता दी जाए या नहीं दी जाए, क्योंकि नियम के तहत विपक्ष की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस पार्टी के पास कुल सदस्य संख्या का 10% होना चाहिए। यानी कि अगर लोकसभा की हम बात करें और मोटे तौर पर यह मान लें कि 540 सदस्य संख्या है, कुल सदस्य संख्या है, तो विपक्ष बनने के लिए 54 सांसद उनके पास होने चाहिए। कांग्रेस के पास चूंकि 10% से कम है इसलिए विपक्ष की मान्यता नहीं दी गई। और आप देख रहे हैं कि जब विपक्ष की मान्यता नहीं दी गई तो हमारे और भी कुछ चीजों में संशोधन करने पड़े, जैसे कि मान लीजिए कि एक कमेटी बननी है जिस कमेटी को विजिलेंस कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करना है। अब वो जो कमेटी थी उसमें एक सदस्य विपक्ष का होता है, विपक्ष दल का नेता होता है, अब कोई विपक्ष ही नहीं है तो अब नेता कहां से आएगा, तो उसमें परिवर्तन किया गया कि नहीं, लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी का नेता, इस तरह से भी परिवर्तन किए गए। इस बात की चर्चा मैं इसलिए इस रूप में कर रहा हूं कि अगर वहां वो दूरदर्शिता दिखाई जाती और विपक्ष की मान्यता दे दी जाती तो हो सकता है कि कटुता का स्तर यहां तक नहीं पहुंच पाता। तो राजदीप सरदेसाई ने जो अपनी बात रखी है, सच पूछिए तो उसको बहुत ही व्यापक स्तर पर रखी है। उन्होंने दोनों पक्षों की कमियां बताई हैं और जाहिर है कि इसके माध्यम से वो यही कहना चाह रहे हैं कि मामले को दोनों ही पक्षों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और राष्ट्रहित को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। दोस्तों, जो दूसरी खबर है वो खासकर सलमान खान बरी हो गए हैं ये खबर है, तो इस खबर के बारे में तो मैं समझता हूं कि मुझसे ज्यादा आप लोग ही जानते होंगे कि पहले उनको सेशन कोर्ट ने सजा दी थी लेकिन फिर उन्होंने अपील की तो अब मुंबई हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। और बरी करने के उनके क्या क्या तर्क हैं वो सब भी आप सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, मैं उन बातों पर नहीं जाता। और सिविल सर्विस की दृष्टि से सच पूछे तो ये खबर उतनी महत्वपूर्ण भी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत हम इसको इम्पोर्टेंस दें तो इस मायने में दें मित्रों की लगातार ये बात उठती है और भारतीय जनता के दिमाग में ये सवाल भी कौंधता है कि क्या कारण है कि जो बहुत बड़े रसूख वाले लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के हों या आर्थिक क्षेत्र के हों, सामाजिक क्षेत्र के हों, जो शक्तिशाली हैं, जो पैसे वाले हैं, उनको सजा नहीं मिल पाती है। हमारी न्यायिक व्यवस्था ही ऐसी है कि आप देखिए कि इसी मामले में 13-14 साल लग गए इसी को का निपटारा होते होते, और फिर पहले सेशन कोर्ट में हुआ, फिर हाई कोर्ट में हुआ, और अगर हाई कोर्ट से मान लीजिए कि सजा हो भी जाती है हम अगर प्रिज्यूम करें तो फिर ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर वहां उतने साल लगते। तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी न्यायिक प्रणाली के बारे में ये कहा जाता है कि हमारी न्यायिक प्रणाली बेसिकली बड़े लोगों के फेवर में है। वकीलों की उतनी बड़ी बड़ी फीस, अगर आप अच्छा वकील रखते हैं तो बहुत फीस लगेगी, उतना लंबा वक्त, फिर अपीलिंग अथॉरिटी, और फिर आप सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, तो ये एक सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है। तो इसलिए एक न्यायिक व्यवस्था पर लगातार प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। और जो न्यायिक व्यवस्था है मित्रों, न्यायिक व्यवस्था जैसा कि अभी मुंबई हाईकोर्ट ने ये बात कही भी कि लोग क्या सोचते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या होना चाहिए, न्यायालय इसके आधार पर निर्णय नहीं देती। न्यायालय के सामने जो सबूत हैं, जो तथ्य हैं, उन तथ्यों को ध्यान में रख करके ही वह अपने निर्णय देती है। नो डाउट फ्रेंड्स कि जो भारत की न्यायिक व्यवस्था है अपनी कुछ सारी कमियों के बावजूद, जैसे बहुत से पद खाली पड़े हैं, बहुत वक्त लग जाता है, 3 करोड़ पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, ये सारी उसकी कमियां हैं, उन सारी कमियों के बावजूद ये मानकर हम चलते हैं कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो काफी अच्छी है, काफी साफ सुथरी है। और सच पूछिए तो अब जिस तरीके के समाज में हम रह रहे हैं तो जो भारतीय जनता है उसका जो एक उसके आशा की जो किरण है वो सच पूछिए तो हमारी न्यायिक व्यवस्था ही है। और पूरे के पूरे हमारे समाज को और हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को सुधारने में, बेहतर बनाने में, अपग्रेड करने में नो डाउट की न्यायिक व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, जो दूसरी तीसरी जो खबर थी वो आपने सुनी, वो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के न्यूज को लेकर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उससे रिलेटेड खबर थी कि किस तरह ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि जो गोमुख से लेकर के जो हरिद्वार तक का जो पूरा एरिया है जहां से गंगा निकलती है और गंगा निकल करके मैदानी क्षेत्र में, हरिद्वार तब में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, इससे पहले वो पहाड़ी क्षेत्रों से आती है, कि उस पूरे के पूरे हिस्से में जो पॉलिथिन है, पॉलिथिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसमें मलबा और कचरा भी नहीं डाला जा सकता। कुछ एरिया में शिविर लगाने में भी मनाही कर दी गई है, प्लास्टिक का उपयोग नहीं होगा। इस तरीके से उसने अपना निर्णय दिया है और कोशिश की है कि किस तरीके से गंगा अभियान, गंगा सफाई अभियान में एक न्यायाधिकरण अपनी तरफ से मदद कर सके और सच में हम उस लक्ष्य को हासिल कर सके। मित्रों, इसी से रिलेटेड एक खबर है, ये भी न्यूज में ही थी कि आपको मालूम है कि दिल्ली में सम विषम संख्या वाली गाड़ी चलाने का फैसला राज्य सरकार ने किया है और न्यूज में यह भी थी कि उसकी भरपाई करने के लिए 6000 पब्लिक बसें चलाई जाएंगी और जो ऑटो रिक्शा भी होंगे उनको फिर दो शिफ्ट में चलाया जाएगा ताकि जो अपनी गाड़ी से आते जाते थे उनको आने जाने के लिए दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध हो सके। ये अभी प्रायोगिक तौर पर है, अब देखते हैं कि ये कितना सफल होता है। मित्रों, यहाँ एक बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ और इससे पहले मैं थोड़ा सा शेयर कर भी चुका हूँ इशारे के तौर पर, और वो ये है कि ये जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, नो डाउट कि इसके पीछे दो तीन तो महत्वपूर्ण कारण है, जिसमें सबसे बड़ा कारण है औद्योगिकीकरण, राइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है वो बहुत ज्यादा है। दूसरा, हमारी अपनी जीवन शैली या कह लीजिए कि हमारी आवश्यकताएं, जिसमें आप परिवहन को ले सकते हैं कि इतनी सारी कारें अब चलने लगी हैं कि उनका उनके कार्बन के उत्सर्जन से सच पूछिए तो दिल्ली का दम घुटने सा लगा है। ये दो तीन महत्वपूर्ण कारण है, हमारी अपनी जीवन शैली तो फिर है ही है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि अब आप इसको कंट्रोल करेंगे कैसे। देखिए, सरकार की अपनी एक सीमा होती है और सरकार अपनी उन सीमाओं के अंदर चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। उसने बाईपास बना दिया, जो बड़े वाहन हैं वो शहर के बाहर से ही होकर जाएंगे और आप अगर छोटे छोटे शहरों में भी रह रहे होंगे तो आप देखिए कि उन शहरों से बाईपास बना दिए गए हैं। शहर में बड़ी गाड़ियों के एंट्री एक पर्टिकुलर टाइम में बैन कर दिया गया ताकि परिवहन मतलब रास्ता भी ब्लॉक न हो और कार्बन का उत्सर्जन भी कम हो। सरकार इस तरह की सारी चीजें करती हैं, लेकिन सवाल यह कि जनता क्या कर रही है, क्योंकि देखिए इसका जो प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि कोई सरकार पर ही इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इसका दुष्प्रभाव तो जनता के हेल्थ पर पड़ रहा है, संकट का सामना उसी को करना पड़ता है। अब सवाल यह है कि क्या जनता के सहयोग के बिना पर्यावरण के प्रदूषण को रोका जा सकता है। अब आप देखिए कि ऊपर जो मैंने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की बात कही और दिल्ली में सम विषम संख्या वाले आदेश की बात कही, अब इन दोनों का संबंध सीधे सीधे पब्लिक से है। पब्लिक से इस मायने में है कि निश्चित रूप से पब्लिक को इसमें सहयोग करना होगा कि भाई वो जितने भी गंगा नदी के किनारे जो उद्योग लगे हुए हैं वो वहां अपना मलबा न डालें, अपना गंदा पानी वहां न डालें, लोग प्लास्टिक गंगा में न फेंकें, तो ये सारे पब्लिक की बात है। तो पब्लिक अगर अपनी तरफ से इन सब चीजों को नहीं रोकेगी तो सरकार भी आखिर में क्या कर लेगी? क्या वो सरकार हर जगह एक एक फरलांग पर वहां पुलिस वाला कोई बैठा है जो लगातार इन चीजों को वाच करता रहे, देखता रहे कि कोई गंदगी न फैलाए? तो पब्लिक की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सम विषम संख्या, नो डाउट की शुरुआत में पब्लिक को बहुत परेशानी होगी, बहुत कठिनाई होगी और लोग अपनी इस कठिनाई को कम करने के लिए अलग अलग तरीके से रास्ते भी निकालेंगे। हो सकता है कि एक गाड़ी जिनके पास है वो दूसरी विषम संख्या वाली गाड़ी खरीद लेंगे, भैया आज ये चला लेंगे कल वो चला लेंगे। तो ये असहयोग की बात हुई, ये सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए रास्ता निकाल रहे हैं और पर्यावरण के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो मित्रों, अगर सच में हमें इस जहरीली सांस को लेने से बचना है तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना होगा, क्योंकि हम ही तो वो जहर फैला रहे हैं, अलग से कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे ये लगता है, सिविल सर्विस के लिहाज से ही आपसे मैं ये बात शेयर कर रहा हूं, एक इनोवेशन जो हमारे दिमाग में आना चाहिए या हम अपनी तरफ से क्या उपाय सुझा सकते हैं उसके तहत हम ये कह सकते हैं कि बिना पब्लिक सपोर्ट के ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को कर पाना आसान नहीं होगा। जैसे आप शहरी प्रदूषण को लें तो शहर में सबसे ज्यादा जो प्रदूषण हो रहा है वो वाहनों के कारण हो रहा है, व्हीकल्स के कारण हो रहा है। तो अब देखें कि हम व्हीकल्स की संख्या को किस तरीके से कम कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि अगर आप मणिपुर चले जाएंगे तो मणिपुर में आपको मणिपुर की सड़कें साइकिलों से भरी हुई दिखेंगी, वहां साइकिल सबसे अच्छा वाहन माना जाता है। आप छोटे शहरों में चले जाइए, मैं अभी रायगढ़ से ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और कल हम लोग यहाँ पास में ही 18-20 किलोमीटर दूर के गांव में गए थे और वो शाम का वक्त था, 4:30 का, तो उस समय स्कूल की छुट्टियां हुई थी। हम देख लेते लड़के और लड़कियों के झुंड के झुंड साइकिलों पर सवार होकर के और तेजी से साइकिल चलाते हुए मस्ती के साथ अपने अपने घरों को जा रहे थे। देयर वॉज नो बाइक एट ऑल, वहां एक भी स्टूडेंट्स के पास बाइक देखने को नहीं मिली, जबकि उनको जो जाना होगा वो काफी दूर जाना होगा, अपने घरों को जब जाएंगे तो 5-7-10 किलोमीटर तक जाना पड़ सकता है, लेकिन सभी साइकिल पर थे। इस तरह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पब्लिक को भी अपनी तरफ से इसमें इसके बारे में सोचना होगा, सहयोग करना होगा, तभी ये चीजें नियंत्रित हो पाएंगी, अन्यथा हम केवल सरकार को दोष देते रहें, उससे उम्मीद करते रहें, तो हम करते ही रह जाएंगे, सही मायने में कुछ परिवर्तन हो पाना मुश्किल होगा। तो मित्रों, ये एक और छोटी सी खबर थी, मैं एक आपको एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूं, सोचने के लिए आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, और प्रश्न ये है कि आपने न्यूज में ही सुना, खासकर तमिलनाडु में जो मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, धूप वगैरह खिली है, लोग बड़े खुश हैं, उसकी खबर थी, उसमें उन्होंने दिया कि वहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है। तो एक छोटा सा प्रश्न मैं दे रहा हूं कि ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही हिमपात क्यों हुआ है, बाकी क्षेत्रों में हिमपात क्यों नहीं हुआ, और खासकर ये प्रश्न मैं अपने फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच और थर्ड बैच के स्टूडेंट्स से विशेष रूप से पूछना चाहूंगा, क्योंकि उनको ज्योग्राफी की जो बेसिक्स बताई गई हैं, मुझे लगता है कि इसके आधार, उस बेसिक्स के आधार पर वो इस प्रश्न का बड़े आराम से उत्तर ढूंढ लेंगे। मित्रों, अब न्यूज़पेपर का चरण है और न्यूज़पेपर के बारे में मैं आज फिर से आपसे कुछ भी डिस्कस करने की स्थिति में नहीं हूं, उसकी जरूरत भी नहीं है, जो क्लिपिंग्स हैं वो नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल हैं, वो आप लोग देख लेंगे। अब मैं आता हूं मित्रों ईमेल पर। फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसमें इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि कल के लाइफ मैनेजमेंट में मैंने जो हॉर्न बजाने की बात कही थी, अपना उदाहरण दिया था, उसको बहुत से स्टूडेंट्स ने फॉलो करना शुरू किया है और वो उन्हें बहुत अच्छा भी लगा, और मेल लिख करके उन्होंने कहा है कि उन्होंने अब ये ठान लिया है कि वो भी हॉर्न नहीं बजाएंगे, और ऐसा करके सच में आप ध्वनि प्रदूषण में बहुत बड़ी मदद करेंगे, और मुझे बेहद खुशी होगी अगर मेरी कही गई बातों को इस तरीके से आप लोग फॉलो करना शुरू करेंगे। तो मित्रों, ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मैं बधाई देता हूं, अन्य श्रोताओं को भी बधाई देता हूं जो सुनने के बाद जब उन्हें सही लगता है तो उसे फॉलो करते हैं, और दूसरे जो श्रोता हैं, प्रिय श्रोता, उनसे भी मैं अर्ज करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे भी इसी तरह के अपने बारे में फैसले लें। तो मित्रों, बहुत से मेल हैं, लिखे गए हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और उन सबके प्रति बहुत बहुत आभार भी, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, पंकज शर्मा जयपुर से, प्रियंका त्रिपाठी गोंडा उत्तर प्रदेश से, विद्या विनोद दिल्ली से, सुमित यादव कालपी उत्तर प्रदेश से, रजनी शुक्ला इलाहाबाद से, रत्नेश सिंह कानपुर से, माया द्विवेदी चित्रकूट से, आशीष कुमार भागलपुर से, सेजिल कुमार राजकोट से, ओपी जाट अजमेर से, स्नेहाशीष चौधरी उड़ीसा से, दिनेश कुमार दिल्ली से, प्रद्युम्न मिश्र मऊ उत्तर प्रदेश से, सुरेश कुमार जटिया उदयपुर से, और शीबा नसीम कुरैसी दिल्ली से, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं इजाजत चाहूंगा, 2 दिन के बाद सोमवार को आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप क्या दिन शुभ हो, आपकी छुट्टियां आपको बहुत ऊर्जावान बनाएं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।